यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शास्त्री श्रीमदिस डिवाइन इंग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय नेतलीला प्रोसेस कौन फाउंडर आचार्य सेव दी होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय श्री श्री गोनिताय भगवान की जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय समवेत भक्त वृंद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज द सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज द सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज द सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज श्री गुरु एंड गौरांग जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय तीन पयार संख्या 99 से 102 तक तो 99, 100 और 101 का तात्पर्य नहीं है इसलिए मैं पढ़ रहा हूं इसके बाद 102 संख्या हम सब लोग पढ़ेंगे 99 संख्या है अपन श्री कृष्ण जदि करे न अवतार अपने आचार्य भक्ति करे न प्रचार यदि श्री कृष्ण को अवतार के रूप में प्रकट होना ही था तो वे स्वयं अपने व्यक्तिगत उदाहरण के द्वारा भक्ति का प्रचार कर सकते थे कौन कह रहा है अद्वैताचार्य अद्वैताचार्य विचार कर रहे हैं और क्या विचार कर रहे हैं कि अगर कृष्ण अवतार लें तो वे स्वयं अपने उदाहरण के द्वारा भक्ति का प्रचार करें। उनकी इच्छा है कि कृष्ण इस प्रकार से अवतार लें। देख रहे हैं ना संसार की दशा कितनी खराब है, तो वे इच्छा कर रहे हैं कि कृष्ण अगर अवतार लें तो अपने उदाहरण के द्वारा भक्ति का प्रचार करें। अपनी आचारी भक्ति करें ना प्रचार, तभी प्रचार हो सकता है। अद्वैताचार्य सोच रहे हैं, नाम है बेनो काले काले धर्म नहीं और काली काले कैसे है वे कृष्ण अवतार। इस कलयुग में भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन के अतिरिक्त कोई अन्य धर्म नहीं है, लेकिन इस युग में भगवान किस प्रकार अवतार लेंगे ये चिंता है अद्वैताचार्य की कि किस प्रकार से हो, कैसे हो ये कार्य। नाम बेनो काले काले धर्म नहीं और काले काले कैसे हवे कृष्ण अवतार। मैं शुद्ध मन से कृष्ण की पूजा करूंगा, मैं उनसे निरंतर विनीत भाव से निवेदन करूंगा। अब यही निष्कर्ष निकाला है, कृष्ण को अगर बस में करना है तो कैसे, विनम्रता के द्वारा ही है कि नहीं। ये भक्ति के आचार्य हैं, अद्वैताचार्य हैं। इसलिए कृष्ण को अगर जीतना है, कृष्ण को बस में करना है और कृष्ण से अगर कुछ काम लेना है, काम कराना है, तो कैसे करेंगे, विनम्रता पूर्वक। तो कह रहे हैं, विनीत भाव से निवेदन करूंगा, शुद्ध भावे करीब कृष्ण रे आराधन निरंतर साधन करीब निवेदन। आप सब लोग मेरे साथ बोलिए, आनिया कृष्ण रे करो कीर्तन संचार, तब से अद्वैत नाम सफल अमार। आनिया कृष्ण रे करो कीर्तन संचार, तब से अद्वैत नाम सफल अमार। आनिया कृष्ण रे करो कीर्तन संचार, तब से अद्वैत नाम सफल अमार। बोलिए, मेरा अद्वैत नाम तभी सार्थक होगा जब मैं कृष्ण को पवित्र नाम कीर्तन के आंदोलन का प्रवर्तन करने के लिए राजी कर सकूंगा। तो अद्वैताचार्य क्या कह रहे हैं कि जब मैं कृष्ण को कीर्तन का नेता बना लूं तभी मेरा अद्वैत नाम सार्थक होगा। अब तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी की, अद्वैतवादी मायावादी दार्शनिक झूठे ही विश्वास करता है कि वह भगवान से अभिन्न है, अतएव वह अद्वैत प्रभु की तरह भगवान से गुहार नहीं लगा सकता। ये प्रभुपाद जी बड़ी गहरी व्याख्या कर रहे हैं। अद्वैताचार्य अपने को कहते हैं कि अद्वैत नाम हमारा तब तक नहीं है जब तक कि कृष्ण से हम जो है एक कीर्तन का प्रचार ना करवा लें, है ना। तो अद्वैत का मतलब ये है, प्रभुपाद जी अद्वैत की व्याख्या कर रहे हैं। अद्वैत की व्याख्या ये है, मतलब एक तो अद्वैताचार्य हैं, उनका नाम है, तो आपने अपने लिए अद्वैताचार्य कह रहे हैं कि मेरा नाम अद्वैत नहीं हो, है ना, मेरा नाम नहीं है ना, कहते ना मेरा नाम नहीं होगा अगर मैं ये ना करूं तो मेरा ये नाम नहीं है ना। तो अद्वैताचार्य इस प्रकार से जो है प्रतिज्ञा कर रहे हैं, अपना नाम बदल लूंगा, है ना। लेकिन दूसरा अद्वैत का अर्थ प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं कि जिसकी इच्छा भगवान से दूसरी नहीं हो। अद्वैत का ये भी मतलब है कि जो अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में मिला दे और दूसरी इच्छा ना करे, वो भी अद्वैत है। लेकिन जो अद्वैतवादी जो मायावादी दार्शनिक हैं, तो वे उनका गलत है विचार। वो क्या सोचते हैं कि भगवान से हर प्रकार से वो एक हैं। जो भक्त है वो अद्वैत होता है, लेकिन किस प्रकार से अपने मन की इच्छा को भगवान की इच्छा में मिला देता है, इस प्रकार से अद्वैत होता है। लेकिन हर प्रकार से अद्वैत नहीं होता है, उसमें अंतर रहता है, भक्त में भगवान में अंतर रहता है, एक दूसरे के साथ प्रेम का संबंध रहता है। तो इसलिए अद्वैताचार्य भगवान से प्रेम की गुहार लगा रहे हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर यह समझना है कि अद्वैत आचार्य जो है भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो वे ऐसा नहीं सोचते हैं कि हर प्रकार से वो भगवान बन गए, तो इसलिए प्रेम की गुहार लगाते हैं। लेकिन जो अद्वैतवादी हैं वो प्रेम की गुहार नहीं लगा सकते हैं, वो सोचते हैं कि हम खुद ही भगवान हैं, नमो नारायण, एक दूसरे को नमो नारायण बोलते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी अंतर बताते हैं कि ये अद्वैत और दूसरे अद्वैत में बड़ा अंतर है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, अद्वैत प्रभु भगवान से अभिन्न है किंतु अंश रूप में निरंतर सेवा करते हैं, ये स्वांश हैं। अद्वैताचार्य महाविष्णु है ना, तो कृष्ण के स्वांश हैं, तो एक प्रकार से वो भगवान से भिन्न नहीं है, लेकिन तो भी वो सेवा करते हैं। फिर जो जीव है ये तो भगवान का भिन्न अंश है, वो कैसे सोचता है कि वो भगवान बन सकता है? जब अद्वैताचार्य जो भगवान के स्वांश हैं वे तक भगवान के प्रति सेवा की भावना रखते हैं, तो फिर जो भिन्न अंश है जीव, वो कैसे सोचता है कि मैं भगवान बन जाऊंगा? इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं, मायावादियों के लिए यह अचिंत है क्योंकि वे संसारी इंद्रियानुभूति के रूप में सोचते हैं और सोचते हैं कि अद्वैतवाद के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अपनी पहचान खो दे। तो संसारिक जो है ना अद्वैतवाद है, अपनी भौतिक बुद्धि लगाते हैं कि अगर जीव भगवान से भिन्न नहीं है, इसका मतलब है कि जीव भगवान से एक हो गया और हम भगवान में मिल गए, हम भगवान बन गए, है ना, तो ये गलत है। किंतु इस श्लोक से यह स्पष्ट है कि अद्वैत प्रभु अपनी पृथक पहचान बनाए रखकर भी भगवान से अभिन्न है, है ना। तो कैसे भगवान से अभिन्न है, पृथक पहचान भी है, भगवान से अभिन्न है, ये कैसे है? समर्पित होकर के, अपनी अलग सी योजना नहीं है। अद्वैताचार्य की जो योजना है वो अपनी स्वतंत्र नहीं है, भगवान से अलग नहीं है, और वे जो है वो चाहते हैं जो भगवान चाहते हैं। तो ये कोई इंद्रिय तृप्ति की इच्छा थोड़ी है अद्वैताचार्य की। अद्वैताचार्य यही चाहते हैं कि भगवान का गुणगान हो, भगवान की महिमा का प्रचार हो, और ये जो जीव हैं जो भगवान से विमुख हो रहे हैं ये भगवान के सम्मुख हो जाएं, इस प्रकार। तो प्रभुपाद लिखते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत भेदाभेद तत्व का प्रचार किया। चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत है, जैसे वैष्णव जो दूसरे वैष्णव आचार्य हैं उनके अलग अलग सिद्धांत हैं, शंकराचार्य का अद्वैतवाद है, तो इसके तो सब विरोधी हैं, जितने वैष्णव आचार्य हैं सबने विरोध किया अद्वैतवाद का। लेकिन बाकी जो वैष्णव आचार्य हैं उनमें एक मध्वाचार्य हुए हैं, उनका सिद्धांत क्या है? द्वैतवाद, अद्वैतवाद के विरोधी हैं, द्वैतवाद। रामानुजाचार्य वो भी अद्वैतवाद के विरोधी हैं, उनका सिद्धांत क्या है? विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, है ना। निम्बार्काचार्य वो भी शंकराचार्य के अद्वैतवाद के विरोधी हैं, उनका सिद्धांत क्या है? द्वैताद्वैतवाद, है ना। और विष्णु स्वामी भी शंकराचार्य के अद्वैतवाद के विरोधी हैं, उनका सिद्धांत क्या है? शुद्धाद्वैत, शुद्धाद्वैतवाद। तो ये चारों जो है ना ये वैष्णव संप्रदाय हैं जिनके सिद्धांत हैं, और चैतन्य महाप्रभु ने सिद्धांत दिया अचिंत भेदाभेद तत्व, अचिंत भेदाभेद तत्व। तो प्रभुपाद लिखते हैं, चिंत द्वैत या भेद तथा अद्वैत यानी अभेद अपूर्ण इंद्रियों की अनुभूतियां हैं। कोई व्यक्ति चिंतन करता है, अपनी भौतिक बुद्धि से चिंतन करता है भेद का या अभेद का, तो अपूर्ण इंद्रियां, है ना, अपूर्ण इंद्रियों के कारण वो समझ नहीं सकता, जो ब्रह्म तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि ब्रह्म सीमित शक्ति की अनुभूति के परे है। किंतु अद्वैत प्रभु के कार्य अचिंत अभेद का यथार्थ प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। अतः जो कोई श्री अद्वैत प्रभु की शरण में जाता है वह सरलता से अचिंत भेदाभेद दर्शन को समझ सकता है। तो अचिंत भेदाभेद तत्व जो चैतन्य महाप्रभु ने दिया है अद्वैताचार्य की कृपा से हम समझ सकते हैं। इसका मतलब क्या है? अचिंत है, जीव का भगवान से भेद भी है और अभेद भी है, और ये चीज जो है भौतिक बुद्धि से नहीं समझी जा सकती, है ना। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी ने कुछ समझाया है और हमें बताया है कि जीव का भगवान से अभेद है, किस प्रकार से, गुणात्मक रूप में, है ना। गुण वही है जो हमारे हैं, भगवान के जो गुण है वही हमारे गुण है ना। लेकिन भेद है किस प्रकार से, मात्रा में। जैसे समुद्र की बूंद है तो उसमें वही गुण है बूंद में जो समुद्र में है, है ना। तो गुणात्मक रूप से अभेद है, फिर मात्रा के रूप में भेद है। समुद्र की बूंद की मात्रा कितनी थोड़ी है इस समुद्र की तुलना में, इस प्रकार से। अब अद्वैत आचार्य जो है कितनी चिंता करते हैं, चैतन्य महाप्रभु का अवतार नहीं हुआ है, है? तो इस संबंध में मैं चैतन्य भागवत से कुछ इनका चरित्र पढ़ के सुना रहा हूं। अद्वैत आचार्य तो ये चैतन्य भागवत का आदि खंड का दूसरा अध्याय है, जिसमें भगवान के अवतार के पहले कौन कौन से भक्त थे, कहाँ थे, कैसे थे, वो सब वर्णन किया जा रहा है। तो इसमें बताते हैं कि उस नवद्वीप में वैष्णव अग्रगण्य श्री अद्वैताचार्य भी निवास करते थे, जो सब लोगों में श्रेष्ठ थे। श्री अद्वैताचार्य का निवास स्थान शांतिपुर में भी था, कभी वे नवद्वीप और कभी वे शांतिपुर में रहते थे। तो इनके दो घर थे, दो मकान थे, शांतिपुर में एक मकान था और दूसरा मकान नवद्वीप में था। तो कभी शांतिपुर चले जाते, कभी नवद्वीप आ जाते थे। ज्ञान भक्ति तथा वैराग्य की शिक्षा देने में वे अन्य गुरुओं में श्रेष्ठ थे। श्री कृष्ण भक्ति वर्णन करने में वे श्री महादेव के समान थे। महादेव महाभागवत 12 महाजनों में से एक महादेव हैं, शिव जी हैं। तो अद्वैत आचार्य शिव जी के समान है। त्रिभुवन में जितने शास्त्रों की प्रसिद्धि है, उन सब के सार रूप में वे श्री कृष्ण चरण भक्ति को ही सदा प्रतिपादन करते। गंगा जल में तुलसी मंजरी डालकर निरंतर वे श्री कृष्ण की आनंद पूर्वक सेवा करते थे। सही नवद्वीपे वैसे वैष्णव अग्रगण्य, अद्वैत आचार्य नाम सर्वे लोके धन्य। ज्ञान भक्ति वैराग्य रे गुरु मुख्य तरुण, कृष्ण भक्ति बखानी तेजे नहिं शंकर। त्रिभुवने आछे जत शास्त्र परचार, सर्वत्र बखाने कृष्ण पदे भक्ति सार। तुलसी मंजरी सहित गंगा जले, नैरवधि सेवे कृष्ण महाकुतूहले। श्री कृष्ण आवेश की तीव्रता में प्रेम हुंकार करते, उनकी वह हुंकार ध्वनि ब्रह्मांड को भेद कर वैकुंठ में सुनाई देती थी। अद्वैताचार्य की हुंकार ध्वनि वैकुंठ में जाती है, मतलब कृष्ण को बुलाने के लिए। उनके इस प्रेम हुंकार को सुनकर भगवान श्री कृष्ण उनकी भक्ति के वशीभूत होकर आविर्भूत हो गए। अपनी हुंकार से उन्होंने खींच लिया भगवान को वैकुंठ से। इतनी शक्ति है भक्ति में, इसलिए श्री अद्वैताचार्य वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ हैं एवं समस्त ब्रह्मांड में उनका भक्ति योग धन्य धन्य है। हुंकारे कारे कृष्ण आवेशे रे तेजे, जे ध्वनि ब्रह्मांड भेदी बैकुंठे ते बाजे। जे प्रेमे रे हुंकारे सुनिया कृष्ण नाथ, भक्ति वसे आपने हईला साक्षात। आता एव अद्वैत वैष्णव अग्रगण्य, निखिल ब्रह्मांड जार भक्ति योग्य धन्य। श्री अद्वैताचार्य भी नदिया में लोगों को भक्ति शून्य देखकर दुख पाते थे। भक्त का जो दुख है वो क्या होता है, जब वो देखता है कि दूसरे लोग भक्त नहीं है तो वो दुखी होता है। अद्वैताचार्य दुखी हैं नदिया में, जहां चैतन्य महाप्रभु को जन्म लेना है उस नदिया शहर में लोग कैसे हैं, भक्ति से शून्य है। सब संसार ही विषय सुख में मदमस्त हो रहा था। कृष्ण पूजा कृष्ण भक्ति किसी को अच्छी नहीं लगती थी। वे क्या करते हैं, एक देवी है बांसुली देवी, उसकी पूजा करते हैं। कई उपहारों से बांसुली की पूजा करते थे। तो कोई मद्य मांस से यक्षों की पूजा करते हैं और नाच गान में निरंतर शोरगुल मचाते रहते हैं। नाच गान करते हैं, यक्षों की पूजा करते हैं, मांस शराब चढ़ा करके। परम मंगलमय श्री कृष्ण नाम को सुनने के लिए भी वे तैयार नहीं हैं। कृष्ण संबंध रहित उत्सवों में श्री भगवान तो क्या, कोई वैदिक देवता भी प्रसन्न नहीं होते हैं। ऐसे उत्सव मनाते थे ये सब देखकर श्री अद्वैत आचार्य मन में बहुत दुख पाते थे। ए मत अद्वैत बैसे न दियाए, भक्ति शून्य सब लोग देखी दुख पाए, सकल संसार मत व्यवहार रसे, कृष्ण पूजा कृष्ण भक्ति करो नही बासी, बासुली पूजा एके हो नाना उपहारे, मध्य मांस दिया के हो यक्ष पूजा करे, निरवधि नृत्य गीत वादे को लहले, न सुने कृष्ण नाम पारमे मंगले, कृष्ण सुने मंगले देवेर नाही सुख, विशेष अद्वैत बड़ पाए मने दुख। अद्वैत आचार्य का हृदय स्वाभाविक करुणा से भरा हुआ था, वे दयावश जीवों के उद्धार की सदा इस प्रकार चिंता किया करते थे। अब कैसे वो विचार करते हैं कि इनका कैसे उद्धार होगा, कैसे चिंता करते हैं, मेरे प्रभु श्री कृष्ण यदि स्वयं अवतार लें तभी समस्त जीवों का उद्धार हो सकता है, तभी अद्वैत सिंह मेरा नाम सार्थक होगा। अपने को शेर कह रहे हैं कि अद्वैत शेर तभी हूं मैं, क्योंकि शेर हुंकार करता है या गर्जना करता है तो अपने शिकार को पकड़ लेता है कि नहीं। तो इसी प्रकार से अद्वैत आचार्य की हुंकार से भगवान भी पकड़े गए, भगवान को भी खींचा। तो अद्वैत सिंह मैं तब अद्वैत सिंह कहलाऊंगा जब भगवान को भी पकड़ करके बुलाऊ। यहाँ पर अद्वैत सिंह मेरा नाम सार्थक होगा जब मैं वैकुंठ नाथ के दर्शन सबको यहाँ कराऊंगा, श्री कृष्ण को यहाँ अवतीर्ण कराकर उनके दर्शन कर नृत्य गान करते हुए सब जीवों का उद्धार करूंगा। स्वभावे अद्वैत बड़े कारुण्य हृदय, जीवेर निस्तार चिंते हई या सदय, मोर प्रभु आसी यदि करे अवतार, तब है ये सकल जीव रे उद्धार, तब था अद्वैत सिंह अमारे बड़ाई, वैकुंठ बल्लभ यदि देखाई ए थाई, आनिया वैकुंठ नाद साक्षात करिया, ना जीव गाई बे सर्व जीव उद्धारिया। स्वयं भगवान को अवतीर्ण कराने का दृढ़ संकल्प लेकर, दृढ़ संकल्प, भजन्ते माम दृढ़ व्रता जैसे गीता में भगवान कहते हैं, तो अद्वैत आचार्य जो है दृढ़ संकल्प लिया उन्होंने क्या कि स्वयं भगवान को अवतीर्ण कराएंगे। स्वयं भगवान, अद्वैत आचार्य भी भगवान है, महाविष्णु है, लेकिन कृष्ण कौन है, स्वयं भगवान, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो अद्वैत आचार्य भगवान है लेकिन वे कहते हैं कि मैं स्वयं भगवान को अवतीर्ण कराऊंगा। दृढ़ संकल्प लिया कि स्वयं भगवान को अवतीर्ण कराने का दृढ़ संकल्प लेकर श्री अद्वैत प्रभु निरंतर एकाग्र चित्त होकर श्री कृष्ण का पूजन करने लगे। उनकी प्रार्थना पर ही श्री चैतन्य अवतार हुआ, ये बात अनेक बार श्री चैतन्य महाप्रभु भी कहते थे। नैरवादी ए मत संकल्प करिया, सेवेन श्री कृष्ण चंद्र एक चित्त हैया, अद्वैत रे कारण चैतन्य अवतार, से प्रभु कहिया आछेन बार बार। श्री अद्वैत अपने आप सब वैष्णवों के साथ मिलकर लोगों को संसार की अनित्यता तथा कृष्ण भजन की आवश्यकता का उपदेश देते, किंतु उन प्राणियों को कोई भी समझा नहीं सकता था, वे उपदेश पर ध्यान ही न देते थे। अति दुखी होकर श्री अद्वैत ने क्या किया, खाना पीना छोड़ दिया। क्यों, अद्वैताचार्य ने खाना पीना छोड़ दिया क्यों, क्योंकि ये लोग सुनते नहीं है उपदेश, वे कृष्ण के भजन का उपदेश देते हैं और ये लोग सुनते नहीं है, इसलिए अद्वैताचार्य ने खाना पीना छोड़ दिया। वे उपदेश पर ध्यान नहीं देते हैं और क्या करते हैं, वे नदिया के लोग क्या करते हैं, कृष्ण के भजन का उपदेश नहीं सुनते हो क्या करते हैं, हाँ यक्षों की पूजा करते हैं मांस और शराब के द्वारा, है ना, और वो जो है ना बेकार के नाच गान करते हैं, उत्सव मनाते हैं जिसमें विष्णु का कीर्तन नहीं है बिल्कुल। अद्वैताचार्य ने खाना पीना छोड़ दिया। सकल वैष्णव मेली अपनी अद्वैते, प्राणी मात्र कार्य के हो नारे बोझाई थे, दुख भावी अद्वैत कार्य ने उपमास, सकल वैष्णव गण छाणे दीर्घ श्वास। सब वैष्णव दुखी होकर लंबी लंबी श्वासें भरने लगे ये देख करके। इस प्रकार सब पाखंडी लोग कहते, जब कहते थे क्या कहते थे, उल्टी बातें बोलते हैं, श्रीवास पंडित की बुराई करते थे, तो उसे सुनकर कृष्ण कृष्ण कहकर सब भक्तगण रोने लगते थे, भक्तों की निंदा करते थे जब वहां के लोग, तो भक्त लोग रोते थे कृष्ण कृष्ण कह करके। उनकी बातों को सुनकर श्री अद्वैत तो क्रोध में आग बबूला हो उठते और आवेश में उन्हें तन के कपड़ों की भी शुद्ध बुद्ध ना रहती और सब वैष्णवों से कहते, सुनो श्रीनिवास, यहाँ श्रीनिवास का मतलब श्रीवास है, श्रीवास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य बाद में हुए हैं लेकिन श्रीवास को भी श्रीनिवास कहा जा रहा है। सुनो श्रीनिवास, हे गंगादास, हे शुक्लांबर, मैं श्री कृष्ण को सबके सामने अब तीर्ण कराऊंगा। श्री कृष्ण ही स्वयं आकर इन सब पाखंडियों का उद्धार करेंगे, वे ही आप सबको साथ लेकर इन सबको कृष्ण भक्ति का तत्व समझाएंगे। ये लोग हमारी बात नहीं सुनते हैं, कृष्ण स्वयं आएंगे आप सब लोगों को साथ लेकर के इनको समझाएंगे, कृष्ण स्वयं समझाएंगे। यदि मैं श्री कृष्ण को प्रकट ना कर सका तो इस अपने शरीर से चार भुजाएं प्रकट कर, कहते हैं अगर कृष्ण को अवतीर्ण नहीं कर पाया तो क्या करूंगा, अपने शरीर में चार भुजाएं प्रकट कर, हाथ में चक्र सुदर्शन लेकर इन पाखंडियों को काट कर इनकी जड़ ही उखाड़ दूंगा। अगर कृष्ण नहीं आए तो इनका तो मैं विनाश कर दूंगा। कृष्ण तो इनको भक्त बना सकते हैं लेकिन अगर कृष्ण नहीं आए तो ये लोग भक्त तो बनेंगे नहीं, तो इनका नाश कर दूंगा चक्र के द्वारा काट करके। तभी श्री कृष्ण मेरे स्वामी होंगे और तभी मैं श्री कृष्ण का दास कहलाऊंगा। देखा कैसी भावना है आदिताचार्य की। ए मत बले जत पाखंडी रे गण, सुनी कृष्ण बलि कांदे भागवत गण, सुनी अद्वैत क्रोध अग्नि है न ज्वले, दिगंबर हई सर्व वैष्णवी रे बोले, सुन श्रीनिवास गंगा दास शुक्लांबर, करी कराई वे कृष्ण सर्व नयन गोचर, सभा उथारी व कृष्ण आपने आसिया, बुझाई व कृष्ण भक्ति तो सभा लैया, जब नाही पारो तब ए देह हईते, प्रकाशिया चारी भोज चक्र लई मुहाते, पाखंडी रे काटिया करी मुस्कंध नास, तबे कृष्ण प्रभु मोर मोही तार दास। इस प्रकार श्री अद्वैत भक्तों को सदा आश्वासन दिया करते थे और कृष्ण अवतार कराने का संकल्प लेकर प्रतिक्षण श्री कृष्ण पूजन करते रहते। सब भक्त भक्तगण भी निरंतर एकाग्रचित होकर श्री कृष्ण चरण कमलों का पूजन करते और रो रो कर उन्हें प्रार्थना करते। हे मत अद्वैत बलेन अनुच्छन, संकल्प करे या पूजे श्री कृष्ण चरण। अब मैं वो घटना सुनाना चाहता हूं कि जब चैतन्य महाप्रभु ने जन्म लिया और अपने को प्रकट नहीं किया, अपने बाल लीलाएं प्रकट की और फिर वो व्याकरण शास्त्र के विद्वान बने, उस समय भी भक्त नहीं थे, और बाद में फिर जब गया में गए, ईश्वरपुर से दीक्षा ली, इसके बाद भक्ति को प्रकाशित किया और एक दिन वो ईश्वर भाव में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि नाढ़ा को बुलाओ, नाढ़ा को बुलाओ, अद्वैताचार्य को नाढ़ा बोलते हैं, है ना। तो वो घटना मैं सुना रहा हूँ कि अद्वैताचार्य किस प्रकार से आचरण करते हैं उस समय जब चैतन्य महाप्रभु ने उनको बुलाया है, तो बड़ा रोचक है ये। एक दिन श्री महाप्रभु ने ईश्वर आवेश में रामाई पंडित को आज्ञा दी, रामाई तुम अद्वैत के घर जाओ। अद्वैत उस समय कहाँ थे, शांतिपुर में थे और चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में थे। तो रामाई से कहते हैं कि रामाई तुम अद्वैत के घर जाओ और उनको मेरे प्रकाश का संवाद सुनाओ, उनसे कहना कि जिनको प्रकट करने के लिए तुमने इतनी आराधना की, जिनके लिए तुम इतने रोए एवं तुमने इतने व्रत किए, उपवास किए, वे तुम्हारे प्रभु आकर प्रकट हो गए हैं। रामाई पंडित, मेरे ख्याल श्रीवास पंडित के भाई रामाई पंडित, ठीक है। तो और वे अपना भक्ति योग लुटाने के लिए आए हैं। रामाई पंडित से कहते हैं चैतन्य महाप्रभु कि अद्वैताचार्य से जाके कहो कि तुम्हारे प्रभु आ गए हैं, आप शीघ्र ही वहां जाकर आनंद में विशेष स्तुति पूजा और नृत्य करो। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अद्वैताचार्य को बताओ कि यहां पर आकर के पूजा नृत्य करो, क्योंकि मैं आ गया हूं, अब मेरी पूजा करो, नृत्य करो, कीर्तन करो। चैतन्य महाप्रभु उनसे एकांत में श्री नित्यानंद का आगमन भी बताना और भी जो कुछ तुमने देखा है वो सब कहना। उनको मेरी पूजा की सामग्री लेकर स्त्री सहित तुरंत ही यहाँ आने के लिए कहो। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जा रे लागी करीला बिस्तर ओ पैवास थे प्रभु तो मार लागी हाईला प्रकाश भक्ति योगे बिलाई ते तार आगमन आपनी आसी अझाट करे विवर्तन निर्जने कहियो नित्यानंद आगमन जे किछु देखी ले तार कहियो कथन आमारे पूजार सज्जे ओ पहारे लिया झाट आसी बारे बोल शस्त्री के हैया। श्रीवास के छोटे भाई रमाई पंडित, ठीक है, श्रीवास के छोटे भाई रमाई पंडित प्रभु की आज्ञा को शिरोधार्य करके उसी समय हरि स्मरण करते हुए चल पड़े। अब रमाई पंडित अद्वैताचार्य को नमस्कार करते हैं और आनंद में पूर्ण होकर कुछ कह नहीं पाते हैं। चैतन्य महाप्रभु जो कुछ कहा है रमाई पंडित अद्वैताचार्य से कह नहीं पाते हैं, क्यों? आनंद में इतना पूर्ण है कि उनके मुंह से वो सब अतएव वे समझ गए कि मेरे लिए प्रभु की आज्ञा हुई है। वे रमाई को देखकर हंसकर बोले, मालूम होता है मुझको लाने के लिए तुम्हें आज्ञा हुई है। रमाई बड़े हाथ जोड़कर बोले, आप तो सब जान ही गए हैं, अतएव चलिए शीघ्र ही। तब आचार्य गोसाई आनंद में बेहबल हो उठे। उनका शरीर कहाँ है उन्हें उनका उसका ज्ञान नहीं रहा। अद्वैत के गहन चरित्र को कौन समझ सकता है, जानते हुए भी अनजान किसी बातें कहते हैं। मनुष्यों के भीतर ईश्वर कहाँ से आ गए हैं जानते हैं, जैसे अज्ञानी हो ऐसे बोलते हैं। मनुष्यों के भीतर ईश्वर कहाँ से आ गए हैं? नदियां में अवतार होना किस शास्त्र में लिखा है? मेरी भक्ति, मेरा वैराग्य, ज्ञान तेरा भाई श्रीनिवास भली प्रकार सब जानता है। अद्वैताचार्य के ऐसे चरित्र हैं जो बड़े अगाध हैं। अद्वैत फिर बोले, रमाई पंडित कहो किस कारण से अचानक तुम्हारा आगमन हुआ है? रमाई पंडित समझ गए कि अब आचार्य देव का चित्त स्थिर हुआ है, अतएव रोकर बोले, हे आचार्य, जिन प्रभु को प्रकट करने के लिए आपने अनवरत आंसू बहाए, महान आराधना की, असंख्य व्रत और उपवास किए, वही प्रभु आपके लिए प्रकट हो गए हैं। अपना भक्ति योग लौटाने के लिए उनका आगमन हुआ है और आपके लिए आज्ञा हुई है कि चलकर नृत्य स्तुति और गान करो। विधि के अनुसार सदांग पूजा की सब सामग्री लेकर स्त्री सहित चलो, ये प्रभु की आज्ञा है। इस प्रकार से रमाई पंडित ने जब कहा तो आचार्य देव भुजाओं को उठाकर रोने लगे। रोते रोते आनंद में बेसुध हो गए। अद्वैताचार्य रोते रोते आनंद में बेहोश हो गए। ये सब देखकर लोग विस्मित हो गए। थोड़ी देर में सचेत होकर हुंकार करने लगे और अपने प्रभु को ले आया हूं ऐसा कहने लगे। मेरे लिए प्रभु अपने वैकुंठ धाम को छोड़कर आ गए, ऐसा कहकर वे रोते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। और सीता देवी जो अद्वैत की पत्नी है, वे भी प्रभु के प्रकाश का समाचार सुनकर आनंद में रोने लगी। श्री अद्वैत प्रभु का अच्युतानंद जो बालक था वह भी निरंतर रोने लगा। ये सब महान भक्त हैं, उनकी पत्नी पुत्र। अद्वैताचार्य अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रो रहे थे और उनको घेर कर चारों ओर उनके सेवक लोग भी रोने लगे। आनंद में रो रहे हैं सब। कोई कहीं पड़ा रो रहा था, किसी को अपने पराये की सुध नहीं थी। इस प्रकार अद्वैताचार्य का घर प्रेममय हो गया। अद्वैताचार्य स्थिर होना चाहते हैं परंतु हो नहीं पाते, भावावेश में अपने शरीर को लगातार हिला रहे हैं। अद्वैत ने रामायण पंडित से पूछा, प्रभु ने मेरे लिए क्या कहा था? उन्होंने उत्तर दिया, शीघ्र चले आने के लिए। अद्वैत बोले, सुनो रामायण पंडित, वे मेरे प्रभु हैं। अद्वैत कह रहे हैं कि सुनो, वे मेरे क्या हैं? प्रभु हैं। इस बात का विश्वास मुझे तभी होगा जब अपने स्त्री चरण उठाकर मेरे मस्तक पर रखेंगे। मुझे विश्वास तब होगा जब अपने चरणों को मेरे माथे में रखेंगे वो, तब मुझे विश्वास होगा कि हाँ वो मेरे प्रभु हैं। तब मैं जानूंगा कि वे मेरे प्राणनाथ हैं, ये मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। रमाई पंडित बोले, प्रभु इस विषय में मैं क्या कहूँ, हाँ मेरे भाग्य में होगा तो ये मैं अपनी आंखों से देख पाऊंगा। जो आपकी इच्छा है प्रभु वही उनकी भी है। ये अवतार ही आपके लिए हुआ है। किसने कहा? रामायण पंडित ने कहा यह अवतार आपके ही लिए हुआ है। रामायण पंडित के वचनों से अद्वैत संतुष्ट हुए, तुरंत ही शुभ यात्रा के लिए तैयारी करने लगे। वे पत्नी से बोले शीघ्र ही तैयार हो जाओ और पूजा की सामग्री लेकर आगे आगे चलो। वे पतिव्रता देवी श्री चैतन्य महाप्रभु के तत्व को जानती हैं, तो सब सामग्री लिए अपने साथ में, सुगंध माला धूप वस्त्र दूध दही नवनीत कपूर पान पूजा विधि के लिए आवश्यक सामग्रियों को लेकर चल पड़ी। श्री अद्वैत महाप्रभु पत्नी को लेकर चले तो सही, परंतु रामायण को समझा दिया कि मेरे आने की बात प्रभु से नहीं कहना। मेरे आने की बात प्रभु से नहीं कहना, समझा दिया। उनसे तुम कहना कि आचार्य नहीं आए, प्रभु से कहना कि आचार्य नहीं आए, देखे तब क्या कहते हैं मेरे प्रभु। मैं तो नंदन आचार्य के घर में छिप कर रहूंगा और तुम वे नहीं आए ऐसा कहकर प्रचार कर देना, परंतु विश्वंभर प्रभु सबके हृदय में विराजमान है। अतएव अद्वैताचार्य का संकल्प उनके चित्त में प्रत्यक्ष हो गया और नवद्वीप में उनका आगमन जान करके तुरंत ही श्रीवास पंडित के घर को चले आए। श्री चैतन्य महाप्रभु के जो निज भक्त हैं वे प्रभु की इच्छा से श्रीवास के घर में आ गए। बिना बुलाए भक्त लोग भी आ गए। प्रभु आवेश में है, ईश्वर आवेश, चैतन्य महाप्रभु ईश्वर के आवेश में है ये समझकर सबको शंका हो रही है और सब चुपचाप रहे। भक्त लोग सब चुपचाप रहे कि भगवान क्या बोलते हैं। सब हरा हृदय वैसे प्रभु विश्वंभर अद्वैत संकल्प चित हैले गोचर आचार्य रे आगमन जानी अपने ठाकुर पंडित गृह चलीला तखने प्राय जत चैतन्य रहने जे भक्त गण प्रभु रे इच्छा सब मिलीला तखन आवेश चित्त प्रभु सभे बुझिया ससंगे आछे न सब नीरव हैया। इतने में देवताओं के नाथ विश्वंभर प्रभु हुंकार करते हुए विष्णु सिंहासन पर जा बैठे। कहां पर हैं चैतन्य महाप्रभु? नवदीप में। कहां? श्रीवास पंडित के घर में है और विष्णु के सिंहासन पर जाकर के बैठ गए। अभी ईश्वर के आवेश में है ना, तो विष्णु के सिंहासन पर जाकर के बैठ गए। हुंकार करके कहने लगे नाढ़ा आ रहा है, नाढ़ा आ रहा है, नाढ़ा मेरी ठकुराई देखना चाहता है। श्री नित्यानंद प्रभु के सब नित्यानंद प्रभु के संकेत को जानते हैं, वे समझ गए कि प्रभु इस समय अपने ऐश्वर्य भाव को प्रकाशित करना चाहते हैं। उन्होंने तुरंत ही छत्र लेकर प्रभु के मस्तक पर धारण कराया। अब चैतन्य महाप्रभु रामाय से कहते हैं मेरी परीक्षा के लिए नाढ़ा ने तुमको भेजा है क्या? मैं जानता हूं कि वह नाढ़ा आ गया है। ऐसा कहते हुए प्रभु सिर को हिलाते हुए कहने लगे सबको जान करके भी ये नाढ़ा मुझे हमेशा छेड़ता रहता है। आप तो नंदनाचार्य के घर में रह गया और तुझे मेरी परीक्षा के लिए भेज दिया है, है? उनको मौका नहीं दिया कि वो बताते कि अद्वैताचार्य नहीं आए, पहले से कह दिया। तुम जाकर शीघ्र उनको यहां ले आओ, ये मैं प्रसन्न मुख से कह रहा हूं। रामायण पंडित फिर बड़े आनंद से चले और जाकर उन्होंने अद्वैत प्रभु को सब वृत्तांत सुनाया। अद्वैताचार्य तो सुनकर आनंद मग्न हो गए और प्रभु के निकट चले आए। उनके मन का संकल्प पूरा हो गया। वो जानना चाहते थे ना कि हमारे प्रभु हैं तो मुझको बुलाएंगे, बांध करके भी बुलाएंगे मुझको, है ना। दूर से ही दंडवत प्रणाम करते स्तुति पढ़ते हुए स्त्री के सहित वहां आए और प्रभु के समीप पहुंचे। ब्रह्मांड विस्मितकारी एक अद्भुत वेश का दर्शन किया उन्होंने। सुनिया आनंदे बाते अद्वैते आचार्य आईला प्रभु रस्थाने सिद्ध हैला कार्य दूरे था के दंडवत करीते करीते शस्त्री के आई से तब पढ़ीते पढ़ीते आईला निर्भय पद हैला सन्मुखे निखिल ब्रह्मांड आप रूप बेसे देखे। अब क्या देखा महाप्रभु को? कैसे देखा? कोटि कंदर्प विजयी सुंदर लावण्य है
ज्योतिर्मय सुंदर सोने जैसा शरीर और प्रसन्न श्रीमुख करोड़ों चंद्रमाओं का स्वामी है। प्रसन्नता से लगता है कि अद्वैत के प्रति बहुत दयालु हैं। करोड़ों सोने के खम्भों जैसे उनके भुजाएं हैं, जिन पर रत्न जटित दिव्य आभूषण सुशोभित हैं। वक्षस्थल पर श्रीवत कौस्तुभ महामणि वनमाला शोभा दे रही हैं। कानों में मकराकृत कुंडल हैं। इस प्रकार से अभी वर्णन हो रहा है चैतन्य महाप्रभु का। प्रसन्न वदन कोटि चंद्र रे ठाकुर अद्वितीय रे प्रतिजेन सदय प्रचुर द्वि बाहु कोटि कर्ण के स्तंभ जिनी तरही दिव्य अलंकार रत्न रे खेचनी। श्रीवत्स कौस्तुभ महामणि शोभे वक्षे मकर कुंडल वैजंती माला दिखे। महाप्रभु के वचन सुन करके, अच्छा महाप्रभु विश्वंभर अद्वैत की ओर देखकर बोले, तुम्हारे संकल्प को पूर्ण करने के लिए ही मैं अवतीर्ण हुआ हूं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तुमने मेरी बड़ी भारी आराधना की है, मैं क्षीर सागर के भीतर सो रहा था। भगवान कहते हैं, मैं क्षीर सागर के भीतर सो रहा था। हरिबोल, कितने लोग सो रहे हैं यहाँ? भगवान कह रहे हैं, मैं क्षीर सागर के भीतर सो रहा था, मैं तो जाग गया हूँ, लेकिन यहाँ सो रहे हैं अभी भी लोग। भगवान मैं क्षीर सागर के भीतर सो रहा था, परंतु तुम्हारे प्रेम के हुंकारों से मेरी निद्रा भंग हो गई। अद्वित की प्रेम के हुंकार से, और यहाँ कुछ लोगों की निद्रा भंग नहीं हो रही है, मैं हुंकार कर रहा हूँ, इतना हुंकार कर रहा हूँ, फिर भी सो रहे हैं। भगवान की निद्रा भंग हुई अद्वैताचार्य की हुंकार से, और मैं माइक पर इतना चिल्ला रहा हूँ तो भी आपकी निद्रा भंग नहीं हो रही है। जीवों के दुख को देखकर जब उसे तुम नहीं सह सके, तो सब जीवों का उद्धार करने के लिए तुम मुझे यहाँ ले आए। चारों ओर तुमने जो ये सब मेरे गण देखे हैं, इन सब का जन्म तुम्हारे ही कारण हुआ है। जिन वैष्णवों के दर्शन की ब्रह्मा आदि मन में कामना किया करते हैं, उनको तुम्हारे कारण अब सब लोग देख पाएंगे। कौन कह रहा है? भगवान चैतन्य कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? अद्वितीय। तुम्हारे संकल्प लागे अवतीर्ण आमी बिस्तरे आमार आराधना कैले तुमी। सुनिया आछिलो क्षीर सागर भीतरे निद्रा भंग मोर तोर प्रेमेरे हुंकारे। देखिया जीवेर दुख न पारी सहिते आमारे अनिल सर्व जीव उद्धारिते। जते के देखिले चतुर देखे मोर गण सभारे हाइले जन्म तुम्हारे कारण। जे वैष्णव देखिते ब्रह्मादि भावे मने तो महिते तहां देखी वे के सर्व जने। इस तरह से अद्वैताचार्य महाप्रभु के वचनों को सुनकर अद्वैत भुजा उठाकर स्त्री सहित रोने लगे और कहने लगे, आज ही मेरे लिए दिन सफल हुआ। कारण आज मेरी समस्त अभिलाषाएं सफल हुई, आज मेरे जन्म कर्म सब सफल हुए, जो आज मैंने आपके युगल चरणों के साक्षात दर्शन किए। जिनकी घोषणा मात्र ही वेद करते हैं, परंतु जिनको देख नहीं पाते, ऐसे आप मेरे लिए प्रत्यक्ष प्रकट हुए। आप प्रकट हुए हैं, ये मेरी शक्ति से नहीं, ये केवल आपकी करुणा है। ये मेरी शक्ति नहीं है, आपकी करुणा है। आपके बिना कौन जीवों का उद्धार कर सकता है? इस प्रकार कहते कहते आचार्य प्रेम में बह चले, यानी प्रेम के अश्रु बहने लगे। तब प्रभु बोले, मेरी पूजा का कार्य करो। भगवान कहते हैं, प्रभु की आज्ञा पाकर आचार्य देव महान हर्ष के साथ श्री चैतन्य चंद्र के श्री चरणों की पूजा विशेष प्रकार से करने लगे। पहले सुगंधित जल से उनके श्री चरण कमलों को धोकर उन पर गंध द्रव्य लेपन किया, फिर दिव्य तुलसी की मंजरी को चंदन में डुबोकर अर्घ्य के साथ चरण कमलों पर चढ़ाया। गंध पुष्प धूप दीप आदि पंच उपचार से श्री चरणों की जब वे पूजा कर रहे थे, तो आपके नेत्रों से प्रेम जल की महाधाराएं बह रही थी। फिर पांच बत्ती जलाकर उन्होंने प्रभु की आरती उतारी और प्रणाम किया। अंत में वे जय जयकार ध्वनि करने लगे। फिर षोडश उपचार से श्री चरणों की पूजा करके दोबारा माला वस्त्र और आभूषण अर्पित किए। पांच रात्र की विशेष विधि के अनुसार पूजा करके इस श्लोक को पढ़ते ही उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। गंध पुष्प धूप दीप पंज उपचारे पूजा करे प्रेम जल बहे महाधारी पंच शिखा ज्वाली पुण्य करे ने वंदना शेष जय जय ध्वनि करे घोषण करिया चरण पूजा षोडश उपचारे आर बार दीला माल वस्त्र अलंकारे शास्त्र दृष्टि पूजा करे पटले विधाने श्लोक पढ़ी करे दंड परिणामे। श्लोक क्या है? गो ब्राह्मण हितकारी आपको नमस्कार है, जगत हितकारी श्री कृष्ण को नमस्कार है, श्री गोविंद को बार बार नमस्कार है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। पहले श्लोक पढ़कर नमस्कार किया, फिर अनेक शास्त्र के अनुसार स्तुति करने लगे। हे सर्व प्राणनाथ विश्वंभर देव आपकी जय हो जय हो, हे करुणा सागर गौरचंद्र आपकी जय हो जय हो, हे भक्तों के वचन सत्य करने वाले आपकी जय हो जय हो, हे महा अवतारी महाप्रभु आपकी जय हो जय हो, हे लक्ष्मी के विनोदकारी रूपधारी आपकी जय हो जय हो, हे श्रीवत्स और कौस्तुभ मणि से विभूषित आपकी जय हो जय हो, हरे कृष्ण मंत्र के प्रकाशक आपकी जय हो जय हो, अपनी भक्ति अथवा प्रेम भक्ति को विलास पूर्वक स्वयं ग्रहण करने वाले आपकी जय हो जय हो, हे शेष साई महाप्रभु आपकी जय हो जय हो, हे सर्व जीवों के आश्रय आपकी जय हो जय हो, आप विष्णु हो आप कृष्ण हो आप नारायण हो आप मत्स्य हो आप कूर्म भगवान हो आप सनातन हो आप वही वराह प्रभु हो वही वामन भगवान हो, आप ही युग युग में वेद की रक्षा करते हो, आप ही राक्षस कुल के नाश करने वाले जानकी जीवन श्री राम हो, आप निषाद राज गुह के वरदाता और अहल्या के उद्धारकारी हो, आपने ही प्रहलाद के लिए अवतार लिया था और हिरण्यकशिपु का वध किया था तब आपका ही नाम नरसिंह पड़ा है, आप ही सब देवताओं के चूड़ामणि स्वरूप हो, आप ही नीलाचल में भोजन करते हो, आपको ही चारों वेद ढूंढते फिरते हैं किंतु आप यहां आकर छिपे बैठे हो, छिपने में आप प्रभो बड़े ही धीर वीर हो परंतु भक्त आपको ढूंढकर प्रकाशित करते हैं, आपका अवतार संकीर्तन आरंभ करने के लिए हुआ है, अनंत ब्रह्मांडों में आपके तक और कुछ नहीं है, ये जो आपके युगल चरण कमल हैं इनके रसास्वादन में श्री गौरी शंकर बेहवल रहते हैं, यही वे श्री चरण हैं जिनकी लक्ष्मी जी एकाग्र चित्त से सेवा करती हैं और इन्हीं के यश को हजार मुख वाले शेष नित्य गाते हैं, इन्हीं श्री चरणों की सदा ब्रह्मा जी पूजा किया करते हैं, इनके ही तत्व का श्रुति स्मृति पुराण सब वर्णन करते हैं, इन्हीं श्री चरणों से सत्यलोक का आक्रमण इन्हीं श्री चरणों ने सत्यलोक का आक्रमण किया था और इनके अर्पण करने से ही राजा बलि का सिर धन्य हुआ था, इन्हीं श्री चरणों से गंगा जी का अवतरण हुआ है जिसके महान वेग को महादेव जी ने अपने शीश पर धारण किया। जय जय सर्व प्राणनाथ विश्वंभर जय जय गौर चंद्र करुणा सागर जय जय भक्त वचन सत्यकारी जय जय मां प्रभु महावतारी जय जय सिंधु सुता रूप मनोरम जय जय श्रीवत्स कौस्तुभ विभूषण जय जय हरे कृष्ण मंदिर प्रकाश जय जय निज भक्ति ग्रहण विलास जय जय महाप्रभु अनंत शयन जय 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 सर्व जीव रे शरण तुम ही विष्णु तुम ही कृष्ण तुम ही नारायण तुम ही मत्स्य तुम ही कूर्म तुम ही सनातन तुम ही सेवा राह प्रभु तुम ही सेवा मन तुम ही कर योगे योगे वेदे रे पालन तुम ही रक्षा को ले हंता जानकी जीवन तुम ही गुहे बार दाता अहल्या मोचन तुम ही से प्रहलाद लागे कली कैले अवतार हिरण्य बधिय नर सिंह नाम जान सर्व देव चूड़ा माने तुम ही द्विजराज तुम ही से भोजन कर नीला चल माज तुम्हारे से चारे वेदे बोले अन्वेषिया तुम ही एथा आसे रही आछे लुकाइया लुकाई ते बड़े प्रभु तुम ही महाधीर भक्त जन धारी तुम कर ये बाहिर संकीर्तन आरंभ तुमार अवतार अनंत ब्रह्मांड तुम वही नहीं आर ए तोरे दुखी ए तोरे तो ए खाने चरण कमल ए हरि से रस गौरी शंकर बिहबल ए से चरण रम से वे एक मने ए हरि से यस गाय सहस्र बदन ए से चरण ब्रह्म पूजाए सदाए श्रुति स्मृति पुराण ए हरि तत्व गाय सत्य लोके आक्रमिल ए से चरण बलि सिर धन्य हैला ए हरे अर्पण ए से चरण हित गंगा अवतार शंकर धारिला सिरे महाबेग चार कोटि बृहस्पति जिनी अद्वैत रे बुद्धि भाल मते जाने से चैतन्य रे शुद्धि। तो कितनी सुंदर प्रार्थना अद्वैताचार्य हैं कर रहे हैं। अद्वैताचार्य की बुद्धि करोड़ों बृहस्पतियों की बुद्धि को भी जीतने वाली है। ये प्रार्थना सुनी आपने, करोड़ों बृहस्पति की बुद्धि को भी जीत लिया, ऐसी प्रार्थना है। चैतन्य देव के तत्व को भली भांति जानते हैं, चरण स्तुति करते हुए उनका मुखमंडल नेत्रों के अश्रुओं से भीग गया और वे श्री चरणों के तले लंबे होकर पड़ गए। सर्व प्राणियों के अंतर्यामी श्री गौरांग राय ने अपना चरण उठाकर अद्वैत के सिर पर रख दिया और चरण अर्पण करते ही जय जय महाध्वनि होने लगी। इस अपूर्व चरित्र को देखकर सब बेहबल हो गए और कोलाहल करने लगे भक्त लोग। कोई भूम पर लोटपोट होने लगा तो कोई ताल ठोंकते हुए उछलने लगा और कोई किसी को गलकंठ करके जोर जोर से रोने लगा। अपने पूर्व संकल्प के अनुसार श्री चरणों को अपने मस्तक पर प्राप्त करके अद्वैताचार्य स्त्री सहित पूर्ण मनोरथ हो गए। तब प्रभु विश्वंभर श्री अद्वैत को आज्ञा करते हुए बोले, ओ नाढ़ा मेरे कीर्तन में नृत्य करो। भगवान कहते हैं मेरे कीर्तन में नृत्य करो। प्रभु की आज्ञा पाकर आचार्य वहीं पर नाना प्रकार के भक्ति भावों को प्रकट करते हुए नृत्य करने लगे। तब तो कीर्तन की अति मनोहर ध्वनि होने लगी और अद्वैताचार्य गौर प्रभु के सम्मुख नाचने लगे। एक क्षण में तो वे जोरदार नृत्य करते और दूसरे क्षण में मधुर नृत्य करते, फिर दांतों में बहुत से तिनकों को उठा लेते और क्षण क्षण उठते, क्षण क्षण में गिरकर लोटपोट हो जाते, क्षण में लंबी लंबी सांस लेते और क्षण में मूर्छित हो जाते। जिस समय जो कीर्तन सुनते उसी समय वैसे ही हो जाते, एक भाव में स्थिर नहीं रह पाते, आनंद में बहे जा रहे थे। अंत में दास भाव में आविष्ट हो गए। दास भाव का प्रभाव अचिंत्य है, समझ में नहीं आ सकता। अद्वैत रे आज्ञा कैला प्रभु विश्वंभर, और ए नाढ़ा अमारे कीर्तन नृत्य कर। पाईया प्रभु रे आज्ञा आचार्य गोसाई, नाना भक्ति योगे नृत्य कर से ठाई। उठेले कीर्तन ध्वनि अति मनोहर, नाचे ने अद्वैत गौर चंद्र रे गोचर। छणे वा विशाल नाचे छणे वा मधुर, छणे वा दशा नेत्रण कर ए प्रचुर। छणे छणे उठे छणे पड़े गड़े जाए, छणे घन श्वास बहे छणे मूर्छा पाए। जे कीर्तन जखन सुनाए से है, एक भाव स्थिर नहि आनंदे भसाए। अवश्य से आशीष बे रहे दास्य भाव, भोजन न जाए से अचिंत्य प्रभाव। अद्वैत दौड़ दौड़ कर महाप्रभु के पास जाते और नित्यानंद जी को देखकर भौहें टेढ़ी करके हंसते और कहते, अच्छा हुआ निताई जो तुम आ गए, इतने दिन तक तुम्हारा पता ही नहीं था, अब जाओगे कहाँ, आज तो तुम्हें बांध कर रखूंगा। नित्यानंद को कहते क्षण में तो श्री निताई से प्रभु कहकर बोलते और क्षण में उनको मतवाला कहते। कभी नित्यानंद को प्रभु बोलते हैं और कभी मतवाला बोलते हैं अद्वैताचार्य। अद्वैत के इन चरित्रों पर नित्यानंद हंसने लगे। इस प्रकार से नृत्य और कीर्तन हुआ। अद्वैत की नृत्य को देखकर सब वैष्णव आनंद के सागर में डूब गए। तब अद्वैत के लिए वहां ठहर जाने की आज्ञा प्रभु ने तत्काल दी और नृत्य बंद कर दिया। उनकी आज्ञा को सिरोधार करके अद्वैत ने नृत्य बंद कर दिया। महाप्रभु ने अपने गले की माला उनको देकर हंसते हुए कहा, वर मांगो वर मांगो। महाप्रभु ने अपने गले की माला अद्वैत के गले पहनाई और कहा, वर मांगो वर मांगो। अद्वैताचार्य ने सुन करके भी कुछ उत्तर नहीं दिया। प्रभु विश्वंभर बार बार मांगो मांगो कहते, मांगो मांगो। अंत में से अद्वैताचार्य बोले, अब मैं क्या वर मांगू, मैंने तो जो वर चाहा था वह संपूर्ण पा ही लिया। जब आपका साक्षात करके आपके सामने नाच लिया तो मन के सब मनोरथ पा चुका, अब क्या वर मांगू। प्रभु साक्षात आपके अवतार के दर्शन कर लिए तो अब क्या मांगू। और रह ही क्या गया मांगने को, क्या इस बात को आप नहीं जानते हैं कि मैंने क्या चाहा था, आपके दिव्य दर्शन में मैंने क्या नहीं देखा है। तब प्रभु विश्वंभर सिर हिलाते हुए बोले, तुम्हारे निमित्त ही मैं प्रकट हुआ हूँ, मैं घर घर में कीर्तन का प्रचार करूंगा, जिससे कि मेरे यश को गाकर सारा संसार नाच उठेगा। ब्रह्मा शिव नारद आदि जिस भक्ति के लिए तपस्या करते हैं, ऐसी भक्ति में सबको लुटाऊंगा, ये मैं तुमसे कह देता हूं। अद्वैताचार्य बोले, यदि आप भक्ति लुटावे तो स्त्री शूद्र मूर्ख और नीच जाति को भी वो प्रदान कीजिए भक्ति। जो लोग विद्या धन के अभिमान में आकर आपके भक्त और आपकी भक्ति को बाधा पहुंचाते हैं, वे सब पापी जल के मरे पश्चाताप करते हुए उस पाखंड से दूर हो जाएं। चंडाल भी आपके नाम और गुण को गा गा कर नाचें। श्री अद्वैत प्रभु के वचन को सुनकर प्रभु ने हुंकार पूर्वक कहा, तुम्हें जो स्वीकार है वही होगा। अद्वैत बोले, न यदि भक्ति विलाई वा स्त्री सूत्र आदि जत मूर्खेरे से दीवा, विद्या धन कोले आदि तपस्या रे मदे, तोरे भक्ति जे जे जन बाधे, से पापिष्ठ सब देखी मारू के पूड़िया, चांडाले नाचू के तोर नाम गुणे गैया। अद्वैत रे बाके सुने करी ला हुंकार, प्रभु बोले सत्य जे तुम्हारे अंगीकार, ये सब वाक्य रे साक्षी सकल संसार, मूर्ख नीचे प्रति कृपा हई ले तहार। थोड़ा सा और आप सुनिए, इसके बाद समाप्त करूंगा। प्रभु के गुणों को गा गा कर चंडाल आदि तो नाच उठे, और भट्ट मिश्र चक्रवर्ती ये केवल निंदा ही करना जानते रहे। ग्रंथ पढ़कर और शीश मुड़ाकर किसी को तो बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हुई कि अपने सर्वनाश के लिए नित्यानंद प्रभु की निंदा करते रहे। अद्वैताचार्य की प्रार्थना पर जगत को प्रेम प्राप्त हुआ, ये सब कथा इस मध्य खंड में कही गई। श्री चैतन्य देव और अद्वैत प्रभु में जितनी प्रेम वार्ता हुई वो सब सरस्वती जानती है। वही भगवती सब की जिह्वा पर अनंत श्री शेष के समान होकर श्री चैतन्य चंद्र का यश गान करती है। समस्त वैष्णवों के चरणों में मेरा नमस्कार है, उनके चरणों में मेरा कोई अपराध ना हो। इस प्रकार श्री आचार्य स्त्री सहित बड़े आनंद को प्राप्त हुए और मनोवांछित फल पाकर वहीं ठहर गए। श्री कृष्ण चैतन्य और श्री नित्यानंद चंद्र प्रभु मेरे जीवन प्राण है, उनके युगल चरणों के सानिध्य में मैं वृंदावन दास उनकी लीलाएं गान करता हूँ। सर्व वैष्णवेरे पाए मोरे नमस्कार, इति अपराध के छोड़ना हो के आमार, शस्त्री के आनंद हैला आचार्य गोसाई, आपे मत पाई रहेला से ठाई, श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तुपद जुगे गान। तो ये जो है अद्वैत मिलन नाम का छठवां अध्याय मध्य खंड का है चैतन्य भागवत का। इसमें से बीच बीच से मैंने पढ़ के सुनाया, बहुत विस्तृत ये सब कथा है। तो आप कुछ थोड़ा सा प्रश्नोत्तर हाँ हाँ अच्छा, ये अच्छा प्रश्न है क्योंकि कुछ स्पष्ट इसमें करना जरूरी है। वो कहते हैं कि आप अपनी भक्ति लुटाइए, जो ब्रह्मा शिव नारद को भी नहीं प्राप्त है वो भी भक्ति आप लुटाओ, शूद्रों को, स्त्रियों को, मूर्खों को और नीचों को। लेकिन जो लोग विद्या धन कुल और तपस्या के अभिमान में आकर आपके भक्त और आपकी भक्ति की निंदा करते हैं, वे सब पापी ये देख करके जल के मरे। हाँ, इसमें है, विद्या धन कुल आदि तपस्या रमदे, तोर भक्ति जे जे जन बाधे, से पापिष्ट सब देखी मारुक पुड़िया। वो जो है जल के मरे उनको भक्ति नहीं प्राप्त होगी, वो ईर्ष्या से जल के मरे हैं उनको भक्ति नहीं मिलेगी, वो ईर्ष्या से जलते रहेंगे उनको भक्ति नहीं मिलेगी। जो आपके भक्तों की भक्ति की निंदा करते हैं वो तपस्वी और ज्ञानी और जो ना बड़े कुलीन बने रहेंगे, इन जल जल के मरेंगे उनको भक्ति नहीं मिलेगी। अद्वैताचार्य कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, ठीक है, नीचों को मिल जाएगी, शूद्रों को मिल जाएगी, स्त्रियों को मिल जाएगी। जो भक्तों के विरोधी हैं, भक्तों की निंदा करते हैं, उनको भक्ति नहीं मिलेगी, चाहे कितने बड़े तपस्वी हो, कुलीन हो, विद्वान हो, उनको भक्ति नहीं मिलेगी। आपका प्रश्न, इनका प्रश्न है कि चैतन्य महाप्रभु हर कलयुग में अवतार क्यों नहीं लेते हैं, जैसे कृष्ण हर द्वापर में अवतार नहीं लेते हैं। श्री कृष्ण का अवतार हर द्वापर में नहीं होता है, ब्रह्मा के एक दिन में एक बार होता है, वैवस्वत मन्वंतर के 28वें द्वापर में कृष्ण का अवतार होता है। तो उसी 28वें कलयुग में चैतन्य महाप्रभु का अवतार होता है और ये कृष्ण का ही अवतार माना जाता है, अलग नहीं है। ये कृष्ण के अवतार में ही जो है चैतन्य महाप्रभु का भी अवतार है, वो कार्य पूरा किया जो कृष्ण के अवतार में नहीं हुआ। इसलिए ब्रह्मा के एक दिन में कृष्ण का एक ही अवतार कहा जाता है, चैतन्य महाप्रभु का अवतार ये अलग नहीं है, एक ही अवतार है। बाकी जो है युग धर्म की स्थापना के लिए भगवान हर युग में अवतार लेते हैं, तो कलयुग में भी अवतार होता है युग धर्म की स्थापना के लिए। तो मोहन रूपा ने भी बताया था कि गौर नारायण नाम से अवतार लेते हैं हर कलयुग में भगवान। आपका प्रश्न से अवतार लेंगे, हाँ भक्तिया माम अभिजान आती, गीता भगवान क्या कहते हैं, भक्तिया माम अभिजान आती यावान निश्चास्मि तत्वतः। भक्ति के द्वारा जो भक्त है वो मुझे जान लेता है, मैं जो हूं और जैसा हूं तब उसे जान लेता है, ठीक है ना। तो भक्ति के बल पर जानते हैं। अद्वैताचार्य ने प्रार्थना की कि आप अपने को छिपाने में बहुत चालाक हैं, भगवान अपने को छिपाने में बहुत चालाक हैं, लेकिन भक्त भगवान से भी ज्यादा चालाक हैं, इसलिए उनको प्रकाशित कर देते हैं, प्रकट कर देते हैं, ठीक है। और फिर शास्त्र में कहीं पर है ऐसा, भविष्यामि सचिसुता अथवा हम धराधामे भूत्वा मत भक्त रूप दृक् मायाम च भविष्यामि कलो संकीर्तनागमे, मायापुर में मैं जन्म लूंगा कलयुग के संकीर्तन का प्रचार करने के लिए। और भविष्यामि सचिसुता वायु पुराण में भी ऐसा है कि मैं सची का पुत्र बनूंगा। तो अद्वैताचार्य तो सब शास्त्रों के ज्ञाता हैं, कौन सा शास्त्र है वो नहीं जानते अद्वैताचार्य, सब शास्त्र जानते हैं। और कोई प्रश्न, अच्छा बाद में प्रश्न करना, धन्यवाद। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की श्री राधा पार्थार्थी ललिता विशाखा गौणता सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। अब जो प्रश्न है वो पास में आकर के पूछे तो आए, अधिकारी ने देखा तो आंखें मिली उनकी और उन...